एकाग्रता की विधि है। और फिर छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग को और स्पष्ट करता है। बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट किया गया है कि जो हमारी शिकायत है कि मन एकाग्र नहीं होता है, तो मन को एकाग्र कैसे करना है उसकी विधि सारी बताई है। और सबसे पहले बताया कि मन को मित्र बनाओ, क्योंकि मन अगर शत्रु बन जाएगा तो वो एकाग्र होने नहीं देगा। इसलिए मन को मित्र बनाने की जरूरत है। भगवान कहते मनुष्य को अपनी आत्म उन्नति करनी चाहिए, आत्मा की अधोगति न होने दे, क्योंकि जीवात्मा स्वयं का मित्र है और शत्रु होता है। जीवात्मा ही स्वयं का मित्र है और शत्रु भी होता है। तब अर्जुन का पुनः एक महत्वपूर्ण सवाल, कब मित्र होता है और कब शत्रु बनता है, जैसे हमारा सवाल कब मित्र बनता है कब शत्रु बनता है। तो भगवान कहते हैं जब मन सहित इंद्रियां जीती हुई है तो मित्र है, और जब मन सहित इंद्रियां परवश है तो वह शत्रु है। आत्मा अपने सतो गुण में है और इंद्रियों के द्वारा वही सतोगुण की एनर्जी प्रवाहित हो रही, तब वो मित्र है। लेकिन जब स्वधर्म के गुण के बजाय पर धर्म के गुण आ जाते हैं, पर धर्म कौन सा है, पर कौन सा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय स्वार्थ, ये सारा पर धर्म है, उसके अधीन जब इंद्रियां हो जाती है तब ये शत्रु बन जाता है, परवश हो गई तब वो शत्रु बन जाता है। फिर भगवान कहते हैं जिसने मन को जीत लिया ऐसा पुरुष मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी से निर्लिप्त रहता है, तथा मन को शांत रख परमात्मा की स्मृति में समा जाता है। वो ईश्वर की स्मृति में अपने मन को एकाग्र कर सकता है। तो एकाग्रता के लिए इंद्रियों को जीतना जरूरी है। अगर इंद्रियां उन्हीं आसक्तियों में लिपटी हुई है फिर तो ये शिकायत बनी रहेगी कि मन ईश्वर में नहीं लगेगा, शत्रु बन जाता है। और यहां भगवान बहुत सुंदर विधि बताते हैं ध्यान करने की, शांत अंतकरण। अंतकरण को शांत रखो, भय रहित योग करने जब बैठो मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, निर्संकल्प हो जाओ। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित योगी को पवित्र एकांत स्थान में आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन इंद्रियां तथा कर्मों को संयम में रखकर निराकार परमात्मा में मन बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र कर हृदय में शुद्ध भावना से योग अभ्यास करना चाहिए। अब योग किसको कहा गया है ये यहां स्पष्ट किया है। पहले युद्ध की बात बताई कि इसको जीतो इसको जीतो इसके ऊपर विजय प्राप्त करो, फिर योग लगेगा, है ना। शांत अंतकरण भय रहित ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित योगी को पवित्र एकांत स्थान में आसन लगा करके। अब आसन लगाने का महत्व क्या है यहां पर, तो भारतीय संस्कृति के अंदर जब ध्यान में बैठते हैं तो तीन आसन विशेष बताए गए, सुखासन पद्मासन या अर्ध पद्मासन, ये तीन आसन बताए गए। अब ये तीन आसन के पीछे महत्व क्या है, उसका मतलब क्या है, क्यों ये आसन लगाना चाहिए। भावार्थ ये है कि कहा जाता है कि हमारे शरीर से एनर्जी निकलने के तीन द्वार हैं। उसमें सबसे पहला द्वार पैर है, यहां से एनर्जी बहुत निकल जाती है। इसलिए जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो पैरों को मोड़ देना, मोड़ देने से क्या होता है कि वो एनर्जी को वहां रोक लेते हैं। कैसे, कई लोग इसीलिए महात्माओं के पास जाते हैं ना, चरण स्पर्श करते हैं ऐसे ऐसे। भावार्थ क्या है उसका कि पैरों से जो एनर्जी निकल रही है वो मेरे तरफ आए, आती नहीं है, ये खाली एक भावना है ना? कई लोग इसीलिए महात्मा पुरुषों के चरण धो करके थाली में वो पानी को फिर चरणामृत के रूप में बांटते हैं और पीते हैं, सोचते एनर्जाइज्ड वाटर है कि जो उन्होंने तपस्या की है वो एनर्जी पानी में हमने ले लिया और वो पानी पीने से हमारी बैटरी भी चार्ज होने लगेगी। अब ऐसे कोई चार्ज होती नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। गीता हमें यही सिखाती है कि क्यों नहीं हम वो एनर्जी खुद में चार्ज करें। किसी की एनर्जी पर कितना डिपेंड रहेंगे, कितना दिन चलेगी वो एनर्जी? तो ये विधि राजयोग नहीं सिखाता है। राजयोग हमें वो विधि बताता उत्तम कि जो पैरों से एनर्जी निकल जाती है तो पैरों को मोड़ लो, आसन लगा लो, और पैरों को अगर मोड़ करके बैठ जाएंगे तो वहां से एनर्जी रुक जाएगी। जैसे एक होस पाइप होता है ना, कोई बगीचे में पानी डाल रहा हो और अचानक कोई मिलने आ जाए, नलका दूर है, पानी वेस्ट भी नहीं जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, पाइप को मोड़ देंगे। जैसे ही पाइप को मोड़ा तो पानी रुक जाएगा। ठीक इसी तरह ये पैर को मोड़ देने की सिस्टम जो है भारत में, वो इसलिए कि वहां से जो ऊर्जा निकल रही है वो रुक जाए और फिर घुटनों से वो ऊर्जा पुनः ऊपर आए। एकाग्रता के लिए वो ऊर्जा बहुत जरूरी है, इसलिए निकल नहीं जानी चाहिए लेकिन वो ऊर्जा ऊपर आनी चाहिए। इसलिए पैरों को मोड़ने का सिस्टम हर धर्म में, हिंदू धर्म में सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन के रूप में उसको मोड़ते हैं, मुसलमान धर्म में जाओ वज्रासन में बैठते हैं, मोड़ने का सिस्टम वहां भी है। क्रिश्चियन धर्म में वो नील डाउन करते हैं, मोड़ने का सिस्टम वहां भी है। तो हर धर्म में ये पैरों को मोड़ा ही इसीलिए जाता है कि वहां से ऊर्जा जो निकल रही है वो निकलनी नहीं चाहिए। आज तो आप सभी कुर्सी पर बैठे हैं, इसलिए हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप पैरों को मोड़ो यहां, लेकिन जब आप बाबा का कमरा है यहां पर, मेडिटेशन रूम है, वहां जब जाकर के बैठ के देखिए। हाँ, जिसको घुटनों का प्रॉब्लम है उसको मैं नहीं कह रही हूं, है ना, जो सहज रीति से बैठ सकते हैं उसको मैं कह रही हूं। इसलिए आप देखेंगे पहले के जमाने में घरों में सोफा सेट नहीं होता था, आसन लगाए होते थे। बिजनेस पर भी लोगों की गद्दियां होती थी, खड़े होकर के बिजनेस नहीं किया जाता था, ऊर्जा निकल जाती है। बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे तो नीचे बैठ के पढ़ाना होता था, कुर्सी टेबल पर नहीं होता था, लेकिन आजकल सब जगह कुर्सी टेबल आ गया है और इसीलिए बच्चा भी पढ़ता है, एक तरफ पढ़ता जाता, दूसरे तरफ अर्थिंग हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, मन की एकाग्रता नष्ट हो गई है बच्चों के अंदर, कारण यही कुर्सी टेबल। इसीलिए आप अपने बच्चों की एकाग्रता को भी बढ़ाना चाहते हो तो घर में तो कम से कम उसको नीचे बैठ करके पढ़ने की आदत डालो कि नीचे बैठ के पढ़ो, ताकि जो ऊर्जा निकल जाती है वो कम से कम ऊर्जा वापस ऊपर की ओर सर्कुलेट हो और वो ऊर्जा हमें एकाग्र करने में मदद करे। भोजन करते थे पहले कहाँ कुर्सी टेबल होती थी, सबको नीचे। तो भारतीय संस्कृति में ओरिजिनलिटी में जो चीजें होती थी ना उसके पीछे बहुत गहरा साइंस था, लेकिन आज उस विज्ञान को लोग भूल गए, वो सीक्रेट्स भूल गए, इसलिए जो वेस्टर्नाइज स्टाइल है उसको बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लिया और इसीलिए व्यक्ति बहुत दिन के अंत में इतना थका हुआ आता है, घर में आता है तो एनर्जी नहीं है उसके अंदर, सारी अर्थिंग हो जाती है उसकी एनर्जी। अच्छा, दूसरा द्वार है शरीर के ऊर्जा को निकलने का, ये हाथ, यहां से भी बहुत ऊर्जा निकल जाती है, इसलिए लोग महात्मा के पास जाते हैं तो आशीर्वाद चाहते हैं कि हाथ रखे सिर पे, हाथ रखने के लिए कहते हैं, सोचते हैं कि हाथ रखेंगे तो वो ऊर्जा हमें मिल जाएंगी, ऐसे कोई ऊर्जा मिलती नहीं है, ये भी एक भावना है खाली, है ना। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हाथ जोड़ने की प्रथा है, क्लोज द सर्किट, सर्किट को बंद कर दो। इसीलिए जब ध्यान में बैठते हैं या प्रार्थना करने बैठते हैं आसन लगा करके और हाथ जोड़ करके, आप दिलवाड़ा जाएंगे देखने के लिए, वहां 108 मूर्तियां हैं ध्यान की स्थिति में दिखाई, हाथ को फोल्ड कर दिया, यानी वो ऊर्जा का फ्लो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसीलिए हाथ जोड़ने की विधि है ना। और तीसरा द्वार है ये आंखें। आंखों से भी ऊर्जा बहुत निकलती है। कोई व्यक्ति के मन के अंदर छल, कपट, स्वार्थ कुछ भी होता है, उसकी आंखें बताती है, क्योंकि आंखों से भी ऊर्जा निकलती है कांस्टेंट। किसी में क्रोध है, कोई पवित्र है, शांत प्रकृति का, वो भी उसकी आंखें बताती है। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सारी भावनाओं, सारी ऊर्जा आंखों से निकलती है। इसीलिए लोग जब मंदिर जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, कोई पूछ ले अगर कहां जा रहे हैं, तो कहते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने। लेकिन वहां जाने के बाद व्यक्ति क्या करता है, आंखें बंद कर देता है और भगवान की आंखें खुली है, तो किसने किसका दर्शन किया? हाँ, गए थे दर्शन करने, लेकिन दर्शन करा के आ जाते हैं, प्रभु मैं नीच पापी खलकामी कपटी हूं, गंदा हूं, बंदा हूं। भगवान ने ऊपर से नीचे तक देख लिया, ये बंदा कैसा है, फिर तो ये कहना चाहिए ना कि दर्शन कराने जा रहे हैं, दर्शन तो किया ही नहीं हमने। और इसीलिए भगवान को भी यही कहते हैं लोग कि हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि, अमी दृष्टि हमारे पर बनी रहे। भगवान कृपा करता है दृष्टि द्वारा, तो रिसीव करने वाला कहां से रिसीव करेगा? अगर तीनों द्वार बंद हो गए तो आएगी कहां से? आज अगर मैं सारे खिड़की दरवाजे हॉल के बंद कर दूं और फिर कहूं बाहर की रोशनी, सूर्य का प्रकाश अंदर आता ही नहीं है, लेकिन उसमें गलती किसकी है, मेरी है या सूर्य की है? मेरी है, मैंने खिड़की दरवाजे बंद, ऐसे मैंने तीनों द्वार अगर बंद कर दिया और फिर मैं कहूं कि भगवान की अमी दृष्टि जैसे मेरे ऊपर तो है ही नहीं, महसूस ही नहीं होती है कि भगवान कुछ आशीर्वाद कृपा कर, लेकिन उसमें दोष किसका है? भगवान देने वाला तो दे रहा है, लेकिन हमने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, तो नुकसान तो हम ही भोग रहे हैं। इसलिए तो इसलिए कहते हैं दृष्टि को खुला रखो। दृष्टि को खुला रख करके उस परमात्मा पर बुद्धि को एकाग्र करो और उस प्रवाह को आने दो। मांगने की जरूरत नहीं है कि मुझे शांति दो, सुख दो, हे प्रभु ये दो। जैसे दिन के समय सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, सूर्य से कभी मांगेंगे हे सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे? मांगेंगे क्या? नहीं, आप खड़े रहो मिलेगा। समुद्र के सामने खड़े रहकर समुद्र से मांगते नहीं है कि हे समुद्र तेरी शीतल हवा का प्रवाह मुझे मिले, मांगते हैं कभी? अरे खड़े रहो, रोम रोम के अंदर वो प्रवाह भर जाता है शीतलता का। ठीक इसी तरह मन और बुद्धि को एकाग्र करो ईश्वर में और उस प्रवाह को रिसीव करना शुरू करो, फिर देखो वो ऊर्जा आपके अंदर फ्लो होने लगती है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन, इंद्रिय तथा कर्मों को संयम में रखो। उस समय हिलना डोलना नहीं होना चाहिए। जितना हिलते डोलते हैं इसका मतलब अंदर मन इतना हिल रहा है, साइकोलॉजिकल है। तो भगवान इसीलिए कहते मन, इंद्रिय तथा कर्म को संयम में रखकर निराकार परमात्मा में मन, बुद्धि और दृष्टि, दृष्टि को भी एकाग्र करो। फिर हृदय के अंदर शुद्ध भावनाओं प्रवाहित करो। शुभ भावना से योग अभ्यास करना चाहिए, ये योग की यथार्थ विधि है ना। ये योग की विधि है। लेकिन उसके लिए एक बहुत सुंदर बात यहां आगे कही है कि यह योग उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। उसमें भी एक कंडीशन है कि पूर्ण कब होगा, योग की यथार्थ प्राप्ति का अनुभव कब होगा, आहार विहार। कहा ना, जैसा अन्न वैसा मन। अब तीन दिन से आप लोग यहां पर आए हैं, दो दिन से, अन्न कैसा मिल रहा है यहां, भोजन कैसा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, घर की याद आ रही है ना? अच्छा नहीं लगा कईयों को, भाई स्पाइसी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है भोजन? क्योंकि ये भोजन जो है महाराजों के द्वारा या बाहर के लोगों के द्वारा बनाया नहीं गया है, यहां बनाने वाले भी रोज योग अभ्यास करते हैं, योगी लोग बनाते हैं बिना पैसे के, बिना कोई अपेक्षा के, शुद्ध भावना से यह आहार तैयार किया जाता है, इसलिए इसको प्रसाद कहा जाता है, है ना? भगवान को भोग लगा करके फिर वो भोग आप सबको बांटा जाता है, भोग भी लगाया जाता है। तो उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वालों का, इसीलिए आपने अपने टाइम टेबल में देखा होगा उठने का कितने बजे लिखा है, 4 बजे। 4 बजे क्यों उठने का लिखा है? उचित संतुलित शयन जागरण, ये एक बहुत बड़ा योग में पार्ट प्ले करता है। क्या होता है कि हमारा ये शरीर बना किससे है? 5 तत्वों से बना है, प्रकृति से बना है, और वही प्रकृति एक नियम में चल रही है। कौन सा नियम में चल रही है? तो प्रकृति सूर्यास्त होने के बाद, इसीलिए सूर्यास्त हो जाने के बाद लोग अपने बच्चे को भी कोई फूल तोड़ने जाता है तो क्या कहते हैं, बेटे फूल नहीं तोड़ना चाहिए रात में, पेड़ पौधे सो गए, कहते हैं ना ऐसे, सुबह तोड़ना, फूल तोड़ना है तो भी रात को नहीं तोड़ने देते हैं कि पेड़ पौधे सो गए। सो गए का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन रिलीज करना उसने बंद कर दिया, ऑक्सीजन लेना शुरू किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू करते हैं। ठीक इसी तरह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह होती है, अमृत वेला उसको कहा जाता, अमृत का समय, तो उस समय उसकी साइकिल चेंज होती है, पेड़ पौधे जागते हैं, यानी वो ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू करते हैं। भावार्थ ये है कि सुबह सुबह जो फर्स्ट ऑक्सीजन निकलता है वो क्वालिटी जो है वो अमृत क्वालिटी है, अमृत जैसी है। उस समय अगर बैठ करके हम ध्यान करें और उस समय वो प्राणवायु जब मिलता है शरीर को, तो बुद्धि की तेजस्विता बढ़ती है। इसीलिए शुरू के लोग यही कहते थे, पहले के जमाने के लोग यही कहते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। विजडम जो मिलती है, माना जो बुद्धि का विकास होता है, वो सुबह के फ्रेश ऑक्सीजन में अमृत जैसा है, इसलिए उसको अमृत वेला कहा। और इसीलिए ऋषि मुनि उस समय में उठ करके जब वो प्राणवायु लेते थे और योग अभ्यास करते थे तो उसी से कंचन काया निरोगी काया होती थी। आज हर एक को बीमारी क्यों है? बीमारी क्यों है? क्योंकि हमने अपनी प्रकृति को डिस्टर्ब कर दिया है, एक्सप्लॉइट कर दिया है। क्योंकि हमारी प्रकृति भी तो उसी 5 तत्वों से बनी है, वो सो जाते हैं अपने टाइम पर सूर्यास्त होने पर, लेकिन हम रात को 12-1 बजे तक इसको खींचते रहते हैं। ये सोना चाहता है, ये प्रकृति भी सोना चाहती, इसलिए आप देखेंगे 8-9 बजने पर उबासी आना शुरू हो जाएगी, संकेत मैसेज देना चालू करता है कि अब मैं सोना चाहता हूं, इट्स हाई टाइम नाउ। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कई लोग रात के समय में चाय पीते हैं, उसको जगाना है, अरे सोने कैसे देंगे हम इसको, माना अपने ही शरीर पर जुल्म कर रहे हैं, इसलिए ये शरीर बीमार पड़ता है, इसलिए ये कंचन काया नहीं होती है। और सुबह में जो फ्रेश क्वालिटी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ब्रेन को भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि उठते ही 8-9 बजे तक है। कितना एक्सप्लॉइटेशन होता है, हम अपने शरीर को कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। इसीलिए आजकल के लोगों के अंदर डिप्रेशन, डिप्रेशन कारण क्या है, टेंशन का कारण क्या है, कि माइंड हेल्दी स्टेट में नहीं है, इसीलिए डिप्रेशन और टेंशन आ जाता है व्यक्ति को। बात बात के अंदर टेंशन हो गया, बात बात में डिप्रेशन हो गया, नर्वसनेस आ गई, क्योंकि उसको जो टॉनिक मिलना चाहिए सुबह का वो टॉनिक नहीं मिलता है। कई बार माँ बाप बच्चों को कह देते हैं, कोई बच्चा रात को पढ़ता है तो क्या कहते हैं, भाई बेटा रात को सो जाओ, तुम जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, फिर सब याद रह जाएगा, कहते हैं ना आप अपने बच्चों को। भावार्थ ये है कि सुबह के समय में अगर बच्चे पढ़ते हैं उठ करके उस वायु में, तो वो फ्रेश ऑक्सीजन, उस क्वालिटी को ऑक्सीजन जो होती है, वो सारे दिन में वो क्वालिटी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको। सारा दिन पोल्यूशन इतना हो जाता है, जो फ्रेश क्वालिटी का ऑक्सीजन ही कहां है। तो उस समय, इसीलिए यहां पर आपको 3 दिन ये टेस्ट दिया जा रहा है कि आप सुबह उठ करके देखो किस तरह आपका मन बुद्धि प्रफुल्लित हो जाता है, और सारा दिन उसके आधार पर उसको जो टॉनिक मिल गया उससे सारा दिन उसका प्रभाव देखो कि कैसा रहता है। सारा प्रभाव, खुश रहता है इंसान, खुशी का अनुभव करता है। आप कभी उठ के देखो, ये साइंस है उसके पीछे, है ना। और एक सीक्रेट आपको बताती हूं इसके पीछे, कि सुबह के समय में ही भगवान भाग्य विधाता के रूप में भाग्य बांटता है। इसीलिए लोग जब भाग्य की बात करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या? और तभी कहा जाता है जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। क्योंकि सारी रात इंसान को नींद नहीं आएंगे, फटकते रहेंगे, लेकिन सुबह 3 बजे के बाद जो नींद लगती है ना, और 3 बजे से ही भगवान का भाग्य बांटने का टाइम शुरू होता है, 3 से 5, और वही टाइम है जो नींद भी बहुत अच्छी आती है। क्योंकि माया नहीं चाहती है कि ये भगवान से भाग्य प्राप्त करे, इसलिए सारी रात नींद नहीं आएंगी, लेकिन 3 बजे के बाद माया कहती है, अच्छा बेटा अब सो जाओ, तुम अब जागने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अब सो जा, है ना, और वो सुला दे। और 3 से 5 में जो नींद होती है ना, इतना फ्रेश कर देती है व्यक्ति को, 2 घंटे की नींद भी एकदम फ्रेश कर देती है, इतनी ताकत वाली होती है। लेकिन उसी समय भगवान भाग्य बांटने का काम करता है, और उस समय जो उठ करके अपने मन को एकाग्र करता है ईश्वर में, तो कहा जाता कि ईश्वर भाग्य लिखने की जो कलम होती है ना, वो आपके हाथ में पकड़ा देता है कि खींच लो, जितनी लंबी रेखा खींचना चाहो खींच लो, देखो आप कितनी लंबी रेखा खींच सकते हैं। और हमने ये प्रत्यक्ष में अपने जीवन में, और लोगों, कई जो योग अभ्यास करने वालों के जीवन को पलटते हुए देखा है, अमृत वेले में कैसे भाग्य विधाता से वरदान प्राप्त करते हुए देखा है। हमने अपने जीवन में भी इस चीज को अनुभव किया है कि किस तरह भाग्य को पलटाया जा सकता है। वो अमृत वेला ही ऐसा है। बुद्धि का विकास कितना होता है ये खुद अनुभव करके देखा है। भावार्थ ये है कि वो समय जो उसका महत्व जान लेता है, और उसको ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। ये चैलेंज है, हमारी चैलेंज है, लेकिन उस समय झुटका नहीं मारना, क्योंकि जैसे किसी को हाथ में कलम पकड़ा दिया जाए और उसको नींद आ जाए, झुटका मारने लगे तो वो लाइन ऊपर खींचने के बजाय क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। तो भाग्य की कलम आपके हाथ में है, भगवान ने स्वतंत्रता दे दी आपको, जितनी लंबी भाग्य की रेखा खींचना चाहो खींचो, और उस समय आपको नींद आती है। माया तो नहीं चाहती है, तो माया क्या करती है, वो हाथ को बार बार आप ऊपर खींच रहे हैं फिर नीचे हो जाती है, फिर खींचना शुरू कर दे फिर नीचे हो जाती, ऊपर उठने ही नहीं देती है। उस समय बैठो, स्वस्थ होकर के बैठो, इसीलिए भगवान ने कहा आसन लगाकर दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठो, और मन बुद्धि और दृष्टि तीनों को उस परमात्मा में एकाग्र करो और उस प्रवाह को आने दो। आप लोग उठे हैं तीन दिन में ये अमृत वेला, नहीं उठे हो तो कल जरूर उठना, कल जरूर उठ के देखिए और उसका प्रभाव सारे दिन पर देखना कैसी एनर्जी आती है। कई लोग सोचते हैं सुबह जल्दी उठेंगे फिर सारा दिन हमारा ये होगा, हाँ थकावट लगेगी, नहीं थकावट नहीं लगेगी, इतनी एक नई ऊर्जा आपके अंदर भर जाएगी और उससे आपके अंदर इतना अंदर में शक्ति आ जाएगी कि सारा दिन भी आपको थकावट का अनुभव नहीं होगा। अनुभव करके देखिए, ट्रायल करके देखिए। तो उचित आहार विहार और संतुलित शयन जागरण, कि रात को जैसे ही पेड़ पौधे सो जाते हम भी अगर थोड़ी जल्दी सोने की आदत डालें तो ये शरीर बहुत खुश होता है हमसे, शरीर के भी हम मित्र बन जाते हैं, शरीर के शत्रु नहीं बनो आप, शरीर को टॉर्चरिंग नहीं करो, शरीर के ऊपर जुल्म नहीं करो, उसको सोना है सो जाने दीजिए। तो संतुलित शयन और जागरण, और फिर सुबह उठो और सुबह उठ करके देखो, आपको इतनी अंदर में एनर्जी मिल जाएंगे। तो ये है योग करने की सही विधि। और फिर भगवान कहते इस योग अभ्यास द्वारा योगी भौतिक एवं मानसिक क्रियाओं से उपराम हो जाता है एवं विशुद्ध मन से आत्मस्वरूप में स्थित होकर के, आत्मस्वरूप में स्थित करो उस समय मन को कि आत्मा सतोगुणी स्वरूप है, आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है इस योग अभ्यास द्वारा। ये अनुभूति है उसकी, मन को एकाग्र करना सहज हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिस स्वरूप में स्थित होगा, अपने आप को जो समझता होगा, उसी की याद उसको सहज स्वाभाविक आएगी। जब आप अपने आप को पिता समझते हो तब कौन याद आता है, आपके बच्चे याद आएंगे। जब आप अपने को पति समझते तब कौन याद आएगा, पत्नी की याद आएंगी। जब आप खुद को बच्चा समझेंगे तो कौन याद आएगा, आपके अपने माता पिता याद आएंगे। आप वकील के पेशे में जब आप अपने को वकील समझते हैं तो कौन याद आएगा, आपको अपने क्लाइंट याद आएंगे। उस समय परिवार के सदस्य याद नहीं आते हैं, जब अपने आप को वकील समझा है तो आपको अपना क्लाइंट ही याद आना है। ठीक इसी तरह जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा, परमात्मा। लेकिन जब परमात्मा को याद करने बैठो और उस समय अपने आप को वकील समझा तो कौन याद आएगा, हाँ? तो भगवान के सामने बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान के सामने जब बैठो उस समय अपनी कॉन्शियसनेस को आत्म स्वरूप में स्थित करो। यही भगवान कहते कि विशुद्ध मन से आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में अति इंद्रिय सुख और आत्म संतुष्टि का अनुभव करता है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अति इंद्रिय सुख क्या होता है उसका अनुभव करके देखिए। इस सत्य स्वरूप में स्थित सर्व प्राप्ति स्वरूप किसी भी प्रकार के दुख से विचलित नहीं हो सकते हैं। इस योग का दृढ़ निश्चय एवं धैर्यता से अभ्यास करने से साधक सफल हो जाता है, उसकी साधना सफल हो जाती है यही साधना है। और ये अभ्यास करके आप देखिए, फिर अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, हठी है, बलवान है, इसलिए इसे वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता। तो भगवान कहते अर्जुन, निरसंदेह मन चंचल है, भगवान भी जानते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, निसंदेह मन चंचल है, परंतु अभ्यास अभ्यास करना पड़ता। कोई भी चीज के लिए यही कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना परफेक्शन नहीं आएगा। योग के लिए भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, मन भटक जाएगा, इधर उधर भागेगा, लेकिन फिर भी जैसे जैसे अभ्यास करते जाओ तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाता है। मन को वश न करने वाले पुरुष के लिए योग कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले पुरुषार्थी के लिए योग सहज हो जाता है। स्ववश करना है, जैसे वो कहानी सुनाई, पहले उसकी दिशा बदली करो, और दिशा बदली करके सूर्य के तरफ मुख हो और परछाई पीछे हो, कामनाएं पीछे हो, परमात्मा की स्मृति में रह करके कर्म करते चलो, तो कोई त्रुटि उसमें नहीं होंगी। योग भी कठिन नहीं लगेगा, शुरू में थोड़ा दिक्कत लगेगी प्रैक्टिस जब तक हो जाए, लेकिन धीरे 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 फिर अभ्यास से मन वश में हो जाता है। बहुत सुंदर एक बात याद आती है अभ्यास से, कि अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर कैसे बना। तो कहा जाता है कि बचपन में पांचों पांडव सोए हुए थे, तो अर्जुन और भीम बाजू बाजू में सोए हुए थे। आधी रात को अचानक अर्जुन की नींद खुली, और नींद खुली तो उसने देखा उसके बाजू में भीम है ही नहीं, तो उसको लगा ये आधी रात में भीम कहां चला गया। तो वो भी उठ करके देखने के लिए गया, तो देखा कि भीम रसोई घर में बैठ के खाना खा रहा था। तो अर्जुन ने पूछा, भीम तू खाना खा रहा है? कहां, बड़ी भूख लगी थी, नींद नहीं आ रही थी तो खाना खा रहा। तो अर्जुन ने कहा, भले खाओ, लेकिन कम से कम बत्ती तो जला देते, अंधेरे में कैसे खा रहे हो? अंधेरे में कैसे खा रहे हो, बत्ती जला देते थे। तो भीम मुस्कुराकर कहता है कि अर्जुन, अभ्यास, मुझे खाने का इतना अभ्यास है, जो वो सीधा मुंह में जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, है ना, अभ्यास। तो वहीं से अर्जुन ने भी प्रेरणा ली कि अगर भीम अंधेरे में भी खा सकता है और मुंह में ही जाता है, मैं भी अगर अभ्यास करूं तो अंधेरे में तीर चलाऊं, निशाने को लगे, और वहां से वो इतना बड़ा धन होता है। तो योग का भी अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से सब सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। और फिर भगवान को और एक प्रश्न पूछता है अर्जुन कि हे भगवान, असफल पुरुषार्थी जिसकी योग में श्रद्धा है, ये नहीं कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, पर अंत समय अगर मानो उसका मन विचलित हो जाए, तो वह योग सिद्धि के बजाय किस गति को प्राप्त होता है? क्या वह छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? बहुत सुंदर यह सवाल है, जो आप सबके मन में भी हो सकता है, कि मानो पुरुषार्थी पुरुषार्थ कर रहा है, अभ्यास भी कर रहा है, योग में उसकी श्रद्धा भी है, लेकिन असफल हो गया क्योंकि अंतिम समय उसका मन विचलित हो गया, तो वो किस गति को प्राप्त होता है? तो भगवान ने बहुत सुंदर उसका जवाब दिया है, पुरुषार्थी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। वो पुनर्जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को जागृत करता है और योग अभ्यास के मार्ग पर आकर्षित होता है, पुनः उस मार्ग पर आगे बढ़ता है। और जो योगी नियम पूर्वक समस्त पापों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से प्रगति करता है, वह श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त हो जाता है। योगी पुरुष तपस्वियों से, ज्ञानियों से तथा सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो और समर्पण भाव के साथ अंतर मन से योग का आचरण करो। योगी बनने की प्रेरणा दी इसलिए भगवान ने, तपस्वी बनने के लिए नहीं कहा, घर बार को छोड़ने के लिए नहीं कहा। और हम भी यही आपको कहते, आप घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने कर्तव्य को संभालते हुए, जिम्मेवारियों को निभाते हुए आप योगी बनो और योगी बन करके देखो कि आपके जीवन के अंदर कर्मों में भी कितनी कुशलता आती है और आप धीरे धीरे जीवन के अंदर कितनी आत्म उन्नति कर सकते हैं। कभी दुर्गति नहीं होती है उस आत्मा की। और इस तरह भगवान ने छठे अध्याय तक ये बातें स्पष्ट किया। सातवें अध्याय में